आज की द्वितीय सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा में आप सुनेंगे कविताएं, प्रस्तुति बिमलेश शर्मा की है।
नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं तैबा रफीक। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। सुनिए साक्षरता इस विषय पर बिमलेश शर्मा लिखित कविताएं, प्रस्तुत कर रहे हैं स्वयं बिमलेश शर्मा।
नमस्कार दोस्तों, मैं बिमल आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर अपनी दो नई और बेहतरीन कविताएं। एक कविता का शीर्षक है अक्षर और एक का है शिक्षा व्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में। क्या है ये साक्षरता दिवस और इसका महत्व क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है? आइए इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। इस दुनिया में अनेकों प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। अगर हम इन्हें मूल रूप से बांटना चाहें तो दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, एक है मानव और एक है पशु पक्षी। पक्षियों को मैं फिलहाल पशु की श्रेणी में रखता हूं तुलनात्मक सुविधा के लिए। और क्या है इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर? हम सब अपनी जुबान में बोलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, फिर ऐसा क्या है मानव पशु से अलग हो जाता है? इसका सीधा और सरल जवाब है अक्षर। जी हाँ, सही सुना आपने। मानव लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसके पास सोचने समझने की बेहतर शक्ति है जो उसे अन्य जीवों से अलग बनाती है। यह शक्ति हमें ज्ञान से मिलती है और ज्ञान हमें अक्षर से मिलता है। यही अक्षर हमें साक्षर बनाते हैं, या फिर यूं समझें, ये अक्षर हम मानवों को सही मायने में मानव बनाते हैं। आइए इसे एक और तरीके से समझते हैं। आज दुनिया में सबसे उन्नत राष्ट्र कौन सा है? ब्रिटेन, जापान, अफ्रीका, एशिया, उसी में भारत भी आता है, उसी श्रेणी में आज विकासशील राष्ट्र कहलाते हैं। विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच का अंतर क्या है? धन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो आपको खाड़ी राष्ट्र में भी दिख जाएंगे। फिर यूरोप और अमेरिका हमसे आगे क्यों कहलाते हैं, या फिर एक वक्त भारत क्यों आगे था? मैं आज की नहीं, वर्षों पहले के भारत की बात कर रहा हूं। जवाब है अक्षर। हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी एजुकेशन, यही मानव को पशु से, एक मानव को दूसरे से और एक राष्ट्र को दूसरे से अलग और उन्नत बनाती है। आइए अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी पहली कविता प्रस्तुत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी और आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं अक्षर हूँ, मैं फासला हूँ, मैं दरमियां हूँ, मैं रास्ता हूँ, मैं अरमान हूँ, मैं संघर्ष हूँ, मैं मंजिल हूँ, मैं गहराई हूँ, मैं आसमां हूँ, मैं शोध हूँ, मैं आविष्कार हूँ, मैं चिंतन हूँ, मैं ध्यान हूँ, मैं पूंजी हूँ, मैं लागत हूँ, मैं विद्या हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अज्ञानी को ज्ञान से परिचित कराता हूँ, मैं सही और गलत का फर्क समझाता हूँ, मैं ऊंच नीच का भेद मिटाता हूँ, मैं समाज को सभ्य बनाता हूँ, मैं विवेक का प्रबोधन हूँ, मैं न्याय की परिकल्पना हूँ, मैं जीवन का उद्देश्य हूँ, मैं व्यवस्था की संरचना हूँ, मैं ईश्वर की सिद्धि हूँ, मैं ज्ञान की वृद्धि हूँ, मैं गुरु की गुरुदक्षिणा हूँ, मैं तृष्णा हूँ, मैं संतुष्टि हूँ, मैं उन्नति और अवनीति का फर्क हूँ, मैं धर्म और अधर्म में तर्क हूँ, मैं श्रद्धा हूँ, मैं तत्वदर्शन हूँ, मैं पूजनीय हूँ, मैं पावन हूँ, मैं युगों युगों का संकलन हूँ, मैं उस संकलन का सार हूँ, मैं ग्रंथ हूँ, मैं शास्त्र हूँ, मैं ज्ञान सागर हूँ, मैं दिवाकर हूँ, मैं वचन हूँ, मैं आश्वासन हूँ, मैं युद्ध और शांति का मार्गदर्शक हूँ, मैं गीता हूँ, मैं कुरान हूँ, मैं बाइबल हूँ, मैं वेद पुराण हूँ, मैं मनुष्य और पशु में अंतर हूँ, मैं ईश्वर के समांतर हूँ, मैं माँ सरस्वती के श्री चरणों का मार्ग हूँ, मैं अवसर हूँ, मैं साक्षरता हूँ, मैं अक्षर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये पहली कविता बहुत पसंद आई होगी। ये है अक्षर और ये ही हमारा और पशुओं के बीच में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये हमारे बीच का फर्क है। अब मेरा कवि हृदय यहीं संतुष्ट नहीं हो रहा है। कवि का काम है समाज को आईना दिखाना। हम कभी कभी पत्रकार और जरूरत पड़े तो शिक्षक भी बन जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ, इस आशा में कि इसे भी आपका प्यार और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। कविता का शीर्षक है शिक्षा व्यवस्था का मौजूदा हाल। समाज को शिक्षा दिशा दिखाता है, देश के भविष्य को आगे बढ़ाता है। शिक्षा नींव है परिवार के सांस्कृतिक उत्थान का, शिक्षा जरिया है व्यक्तिगत अरमान का, शिक्षा राष्ट्र का अभियान है, शिक्षा से जुड़ा मानव कल्याण है, शिक्षा धर्म और शांति की व्यवस्था को करता है साकार, जीवन मूल्य शिक्षा के बगैर ले नहीं सकते आकार। शिक्षा ने सनातन में इंसान को ब्राह्मण बनाया, इस राष्ट्र को प्राचीन काल में श्रेष्ठता के शिखर तक पहुंचाया। अब आइए वर्तमान में आते हैं, आपको वर्तमान परिस्थिति से अवगत कराते हैं। शिक्षा की दुकान अब इंटरनेशनल स्कूल के नाम से कई व्यापारी चलाते हैं, हमें लगता है ये राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। फीस पेमेंट इन दिनों ऑनलाइन मंथली इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है, वसूली के लिए स्कूल का बैंक फाइनेंस से भी गठजोड़ किया जाता है। मध्यम वर्गीय परिवार आज अपने बच्चों को उद्देश्य बनाकर पढ़ाते हैं, खाना कभी एक वक्त का कम पड़ जाए फीस टाइम पे जमा करा के स्वयं को लेट चार्जेस से बचाते हैं। फीस अब किराना स्टोर के बिल की तरह आते हैं, ट्यूशन, हॉबी, पिकनिक, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आर्ट्स इत्यादि के चार्जेस उसमें लाइन से समाते हैं। विद्यार्थी के आचरण में परिवर्तन हो ना हो, यूनिफॉर्म हर साल नए रंग में आता है। पहले बड़ों या फिर दोस्तों की किताबों से काम चला लेते थे, अब पाठ्यक्रम के नियम ही समझ के परे हो जाता है। स्कूल आजकल बस से लेके किताब तक का व्यवसाय चलाते हैं और शिक्षा अर्जित करने के लिए बेचारे छात्र ट्यूशन के चक्कर लगाते हैं। विडंबना ये है, आचरण में सुधार हो इसलिए माता पिता बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते हैं, फिर उन्हीं स्कूलों में सीसीटीवी की मांग करके अपने बच्चों को दुराचारियों से बचाते हैं। देश का एक बड़ा तबका गरीबी रेखा का शिकार है, प्राइवेट स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल बेचारों की पहुंच से बाहर है। अब जरा सरकारी स्कूलों की तरफ आते हैं, सरकारी शिक्षक भी अपने बच्चों को शायद ही उसमें पढ़ाते हैं। आम आदमी इस पूरी व्यवस्था से त्रस्त है और समाज बेफिजूल बहस में व्यस्त है। इस व्यवस्था में रचनात्मक सुधार लाना होगा, सरकार, मीडिया, समाज सबको मिलकर अपना किरदार निभाना होगा। इसी के साथ ये मेरी दूसरी कविता का अंत हुआ। ये तो रही आज की परिस्थिति, लेकिन जैसा कि कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जिस तरह हमने परिवर्तन देखा है बीते 74 सालों में, मेरे कहने का तात्पर्य है जिस रूप में हमें भारत आज़ाद मिला था और आज का दिन है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम और बेहतर होंगे और फिर वही पुराना शीर्ष मुकाम हासिल करेंगे। रफ्तार आपको लग सकता है धीमी है, लेकिन यकीन मानिए सही दिशा में है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आपने सुना होगा हमारी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम कर रही है। मुझे अपना एक शेर याद आता है, चलिए आपको सुनाता हूँ। रफ्तार भले धीमी हो, सफ़र जारी रहना चाहिए, मझधार में अगर कश्ती उतारनी पड़े तो तूफान को आंख दिखाने की तैयारी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं बिमल आपसे इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत कविताएं, प्रस्तुत कर रहे थे बिमलेश शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति है, इसके निर्माता हैं संजय पुनालेकर। श्रोताओं, कार्यक्रम में फिलहाल समय है कुछ फिल्मी गीतों का, तो चलिए सुनते हैं।